ओम शांति। अभी जो गीत बज रहा था तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। सचमुच जब पांडव भवन में प्रवेश करते हैं तो सामने बाबा खड़े दिखाई देते हैं और जहाँ जहाँ भी कदम पड़ते हैं बाबा के दिव्य अलौकिक अनुभव होते हैं। अनुभव तो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा प्रमाण है। बहुत सारी बातें कितनी भी ज्ञान की सुने तो भूल जाती हैं, लेकिन अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। इसलिए संसार में भी सबसे बड़ा प्रमाण अनुभव प्रमाण गाया हुआ। कुछ ऐसी विशेष अनुभव, क्योंकि ज्ञान तो सुनते रहते हैं लेकिन अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव जो अपने लिए भी शक्तिशाली हैं और दूसरों के लिए भी प्रभावशाली हैं, कुछ अपने जीवन के सुनाना चाहेंगे। सबसे पहला अनुभव तो ये है कि इस धरनी पर हम सभी रह रहे हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की लॉटरी है। पिछले जन्म में इतने पुण्य कर्म विशेष किए हैं जो यहाँ रहने का मौका मिलता है। हम जैसे तो कभी कभी आ पाते हैं, कुछ पुण्य की कर्मों में कुछ कमी रही होगी, लेकिन आप जैसी विशेष आत्माएं जो यहाँ सेवा के लिए निरंतर रह रही हैं, सच मानिए बहुत भक्ति पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन व्रत नेम इतना किया है जो भगवान ने अपने अंदर समा लिया। तो पहले तो आप सभी अपने सौभाग्य के लिए तालियां बजाइए कि वहाँ मेरा भाग्य और वहाँ मेरा भाग्य विधाता भगवान वाह। बहाना कोई भी हो, किसी प्रकार की सेवा हो, लेकिन जहाँ स्थायी रूप से रहने का मौका मिले तो इससे बड़ा नाश, इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है। तो ये भूमि है तपोभूमि, पुण्य भूमि, चरित्र भूमि, है ना, भगवान की कर्म भूमि, और सबसे बड़ा सब तीर्थों में तीर्थ महान और माउंट आबू राजस्थान। आज अभी हम जब बाबा के कमरे में बैठते हैं तो बाबा हमेशा हमको कोई नई संकल्प देते हैं और उन संकल्पों को लेकर के हम चलते हैं, सफलता हमको 100% प्राप्त होती है। तो आज बाबा ने जो संकल्प दिया है वो सभी के लिए दिया है, क्योंकि संसार को ये बताना कि महान तीर्थ माउंट आबू है, ये तो हम और आप सभी बताएंगे तभी ना लोगों को समझ में आएगा। सेवा तो बहुत अच्छी हो रही है, सब बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, लेकिन बात होती है किसी पॉइंट को हाईलाइट करना, किसी बात विशेष को समझाना और लोगों में इस प्रकार की लहर फैलाना। तो बाबा ने इशारा दिया है कि ये संकल्प दे के जाओ और सबको ये प्रेरणा आए कि सब तीर्थों में तीर्थ महान माउंट आबू राजस्थान, हरेक अपना अपना अनुभव लिखें। सभी को कुछ न कुछ तो अनुभव है ही, हरेक को अपने हिसाब से अनुभव होते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो सारे विश्व में से माउंट आबू के आकर के जिसने जो भी अनुभव किए हैं वो अनुभव की अथॉरिटी की एक बुकलेट तैयार करें और वो सभी को जो यहाँ आते हैं, छोटे लाल भाई जी ये हमारे संकल्प को आप आगे बढ़ाएंगे, जो आप आते जो भी यहाँ आते हैं तो माउंट आबू की ना डायरी देते हैं ना, उसमें ज्ञान है विशेष, लेकिन लिखित कुछ भी नहीं है, चित्र हैं लिखित कुछ भी नहीं है। उसमें ऐसी डायरी तैयार करें जो चित्र भी हों उस प्रकार के, जिनके अनुभव हैं और लिखित भी हो और अनुभव हो, वो जो पढ़ेंगे तो उनकी आंखें खुलेंगी ना, खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, क्योंकि उनको पढ़ने को मिलेगा। कहाँ लोग डायरी लेकर लिख पाते हैं, तो डायरी बनाएं थोड़ी और उसकी स्टाइल थोड़ी लंबाई चौड़ाई बढ़ा दें और चित्रों से सेटिंग करें, जिसमें सारा माउंट आबू पांडव भवन जो भी चित्र हैं जिस प्रकार के भी हैं, और लिखित अनुभव, हर एक का अपना अपना अनुभव। तो बाबा ने इशारा दिया, फिर देखो माउंट आबू में ऑटोमेटिक नेचुरल निरंतर भीड़ कितनी लगेगी, ऐसा बाबा ने संकल्प दिया है। और मैं भी निर्भय भाई सब को ये संकल्प लिखित में दे के जाऊँगी, और आप सब भी संकल्पों को आगे बढ़ाना, ये बाबा ने इशारा दिया है। जैसा कि एक एक जो कहा जाता है कड़ कड़ में भगवान, ये बात गलत नहीं है, किसी को तो अनुभूतियाँ हुई है ना। कड़ कड़ का मतलब वो लोग गलत समझ लेते हैं, कड़ कड़ में कपड़े में इसमें, और उसका अर्थ नहीं समझते हैं। पर हर जगह जहाँ जहाँ भगवान के कदम पड़े, जिस जिस रूम में जो जो बैठ के कार्य किया, जो पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट किए, उसका कितना इफेक्ट पड़ता है जो भी आते हैं। तो अनुभूतियाँ होती हैं तो मुख से निकलता है वाह कमाल है, हम बाबा के रूप में बैठे रूम में हमें ये अनुभूति हुई, हम मेडिटेशन रूम में बैठे हमें ये अनुभूति हुई, हम हिस्ट्री रूम में बैठे हमें ये अनुभूति हुई, होती है ना। तो अलग अलग शांति समय बैठे, तो जैसे मैं आपको अपना छोटा छोटा अनुभव यहीं के, मैं सबसे पहले जब साकार बाबा से मुलाकात करने आई, सच आपको बतलाती हूँ 1% भी भगवान पर विश्वास नहीं था। अपनी लौकिक माँ के बेस पर एक अनुभव करने के लिए मैं आई, और मैंने निश्चय किया था अगर मुझे अनुभूति हो गई कि भगवान आते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में, तो अपने जीवन को मैं न्यौछावर करूँगी। तो मैंने कभी अपने मन की बात किसी को बताई नहीं, सबसे पहले पांडव भवन के आंगन की बात बताती हूँ। जैसे ही पार्टी आती थी, बाबा दृष्टि मुलाकात करते थे और टोली खिलाते थे। आगरा और ग्वालियर की पार्टी 100 माताएं और 50 भाई, माना 100 की पार्टी थी, कन्या में अकेली थी। माताओं की लाइन के जस्ट पीछे एकदम मैं खड़ी हो गई, और उस समय मैं ऐसी झालर वाली फ्रॉक पहनी हुई थी, मैंने अपनी टांगों में सटाया कि बाबा को 1% भी मैं दिखाई ना दूँ, ऐसी मैं सेट हुई। और मन में सोचा कि हे भगवान, अगर आप इन ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो आप तो मुझे पहचान सकते हैं, मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ, आप तो मुझे पहचान सकते हैं कि मैं आपकी सेवा के काबिल बन सकती हूँ। अगर मैं आपकी सेवा के काबिल बन सकती हूँ तो पहले मुझे बुला करके टोली दी जाए। बताओ, मैं दिखाई भी नहीं दे रही हूँ, मैं सबसे पीछे छिपी हुई हूँ, और मेरी आयु कितनी थी, 14 साल की, उस समय इतनी मोटी ताजी तो थी नहीं, दुबली पतली थी, और बाबा को नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन बाबा ने मुझे सबसे पहले बुलाया, पहले टोली मुझे थी, भगवान तो पास हो गए, उसमें तो कोई शक की बात नहीं, मुझे निश्चय हुआ। लेकिन संशय का कीड़ा दिमाग में घुस गया, क्या घुस गया, जरूर बाबा को मेरी फ्रॉक दिखाई दे गई होगी, और उन्होंने बच्ची समझ के मुझे सबसे पहले बुला लिया, संशय आ जाता है ना मन में। लेकिन भगवान तो 100% पास हुए और मैं थोड़ा फेल हो गई, कोई बात नहीं, क्यूरियसिटी तो बनी थी। शाम के टाइम हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चलाते, मैं गई, फिर मैंने अपने मन में क्वेश्चन किया, बाबा स्टेज पर बैठे थे, मैं बीच में बैठी थी, मैं बाबा से बात करी भगवान से, माना निराकाश बाबा से बात कर रही थी कि बाबा सही में आप ब्रह्मा बाबा के तन में कैसे आते हो, मेरे जीवन के सौदे का सवाल है। मैं ऐसे ही घूमने फिरने नहीं आई हूँ, मैं ये अनुभव करने आई हूँ कि सही में भगवान का कार्य चल रहा है, सही में भगवान का अवतरण हो चुका है, सही में भगवान आकर के ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य करा रहे हैं। अगर करा रहे हैं, सच है, तो आप कैसे आते हो उनके तन में, एक झलक तो दिखाइए। तो बच्चे ही होते हैं ना, और भगवान को तो बच्चे प्यारे होते हैं। आप सभी को आश्चर्य लगेगा, उसी क्षण मेरे कहने में इतनी सी भी देरी नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट मैंने सोचा हो, कुछ इंतजार किया हो, जैसे ही मैं बोल रही हूँ वैसे ही ब्रह्मा बाबा के चारों तरफ लाल लाइट का चक्कर घूमने लगा, पूरा चक्कर 3-4 बार घूमा होगा। घूमते घूमते सिमटते सिमटते एकदम पहले ब्रह्मा बाबा अंदर थे, चक्र बाहर चल रहा था, फिर सिमटते सिमटते भ्रक्ति के बीच में इतना सुंदर तिलक सेट हो गया और बाबा बाहर और शिव बाबा अंदर, कितना सुंदर नज़ारा होगा। वो उस नज़ारे को देखकर मैं एकदम अंतर ध्यान हो गई। 1.5 घंटा 1 घंटा जो बाबा की मुरली चली वो मेरे आकाशवाणी की तरह से गूंज रही थी, बाकी मेरी तो आंखें बंद, मैं तो वही दृश्य देख रही थी। फिर आपको वंडर लगेगा कि मुरली पूरी हो गई, बाबा भी चले गए, मैं तो बैठी रह गई, मतलब सब लोग चले गए। और जब मेरी आँख खुलती है मैं देखती हूँ यहाँ हॉल में कोई नहीं, मैं ही बैठी हूँ, तो भड़बड़ा के जैसे संकोच और शर्मीलापन होता है ना, ऐसे करके मैं भाग ली कि मैं ही बैठी रह गई, लोग क्या सोच रहे होंगे। लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई, वो सीन बराबर चलता रहा और बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होती रहीं। जब सवेरे मैं क्लास में आई तो हाउसफुल और मैं सबसे पीछे बैठी थी, एकदम सबसे पीछे। फिर मेरे संकल्प चले, बाबा हे भगवान, मुझे निश्चय हो रहा है कि सही में आप आ चुके हैं, लेकिन अगर मैं ब्रह्मा कुमारी बन भी गई तो मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मैं तो ऐसे ही देखने के अनुभव करने के संकल्प से आई हूँ। मैं सेंटर पे कभी कभी बहन जी आती तो चली जाती थी, मैं क्लास रोजाना नहीं करती थी, मुझे कोई निश्चय नहीं था, कोई मुरली की समझ नहीं थी। एक लौकिक माँ ने बहुत प्यार से, क्योंकि जस्ट हमारी लौकिक माँ मम्मा से मिल के गई, बाबा से मिल के गई, तो बहुत प्यार से कहा, बेटा अगर सच में तुम ब्रह्मा कुमारी बन गई तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। क्योंकि हम 6 बहनें भी सब छोटी, मैं ही बड़ी बहन थी। तो माताजी के कहने के संकल्प से मैं आई कि अगर मुझे निश्चय हुआ तो मैं भी कुछ जीवन का सौदा करूँगी। तो जब मैं पीछे बैठी तो मैंने संकल्प लिया कि हे भगवान, जब मेरी आप सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं तो एक मनोकामना जरूर पूरी करें। क्या? जो आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सब बड़ी बड़ी दादियाँ, प्रकाशमणि दादी, गुलजार, सब दादियाँ क्लास में थी, सब महारथी भाई बहन क्लास में थे। मेरी दिल हो रही है कि मैं आगे जाऊं, आपकी दृष्टि लूं, साकाश लूं, कुछ अपने अंदर शक्ति भरूं। ऐसा हो सकता है? ऐसा आप कर सकते हैं, मेरी तो हिम्मत नहीं है। मैं कैसे सब कुछ हर एक को निकाल करके बीच में से चीरते फाड़ते मैं आगे बैठ सकती, हिम्मत है क्या? कदापि नहीं। आप मुझे आगे बुला सकते, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो। आपको विश्वास नहीं होगा, मुरली चलते चलते चलाते चलाते बाबा ने कहा, जो आगरे वाली बच्ची है ना उसको आगे बैठाओ। रियली कुमार का बच्ची थोड़ा खिसकना, गुलजार बच्ची थोड़ा खिसकना, और बीच में मुझे बैठाया, कितना बड़ा सौभाग्य है। मतलब उस मुरली चलाते चलाते बाबा ने बुलाया और बीच में मुझे बैठाया, तो खुशी का ठिकाना कितना पारावार होगा। तो उस हिसाब से फिर बाबा ने मालूम है क्या किया, कि बहुत बड़ी लॉटरी मिली। मैं तो केवल दृष्टि लेने के संकल्प से ही मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, पर बाबा ने कहा, बच्ची जो बाबा महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं ना, वो स्टेज पे बैठ के सुनाना, रिपीट करना। कितनी बड़ी बात, मना वो स्टेज पे बैठ के रिपीट करना। फिर तो बाप रे बाप, दृष्टि भी ले रही हूँ, लिख भी रही हूँ, याद भी कर रही हूँ, क्यों तभी ना सुना पाऊँगी। तो दृष्टि मेरी टकाटक लगी हुई थी, लिखती तो मैं कहीं आड़े टेढ़े लिख रही थी, पर जो बाबा महावाक्य उच्चारण कर रहे थे वो दिमाग में बराबर फीड कर रही थी। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मैंने 7-8 पॉइंट याद किए, डायरी को नहीं देखा, पढ़ने का टाइम ही नहीं। जैसे मुरली पूरी हुई, बाबा ने, बच्ची यहाँ बैठो सुनाओ, बताइए कितनी बड़ी हिम्मत की बात है, छोटी सी इतनी बड़ी सभा। तो बाबा उठे और हिस्ट्री हॉल के बाजू में जो गेट है ना अपना, वो गेट पर खड़े हो गए और मैंने जो पॉइंट्स रिपीट किए टोटल बाबा ने सुने, सारी सभा ने सुने और खूब बाबा ने ताली बजाई और सारी सभा ने ताली बजाई। और फिर बाबा ने क्या कहा, जितने दिन रहोगी तब तक रोजाना मुरली ऐसे ही रिपीट करोगी। तो पूरा मास्टर मुरलीधर बना दिया ना, इतनी हिम्मत और बाबा की स्टेज पर बैठना और रोजाना मुरली रिपीट करना, कितनी बड़ी लॉटरी है ना। ऐसे जीवन के बहुत वंडरफुल अनुभव हैं और इस अनुभव के आधार पर बाबा ने मुझे अपने कमरे बाबा रूम में बुलाया और बाबा रूम में बुला कर के मेरे से पूछा कि बच्ची, अचानक मेरा रिजल्ट आया बोर्ड का, एग्ज़ाम दे के आई। ये मम्मा डे था, 24 जून 25 जून की बात थी। तो बाबा ने बुलाया, बच्ची तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। क्या खुशखबरी बाबा? तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तुम फर्स्ट डिवीज़न पास हुई हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो मैंने कहा, बाबा मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मैंने सोचा था कि डॉक्टर जैसी सेवा तो कोई करता नहीं है, नेक्स्ट टू गॉड तो डॉक्टर को कहती हैं। और मेरे अंदर में सदा ये शुभ भावना रहती थी, कोई बीमार ना पड़े और पड़े तो फौरन ठीक हो जाए, परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो। और मेरे अंदर इतनी वीकनेस थी कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल में किसी को देख लिया तो हॉस्पिटल में जाते ही मेरे घुटने की नस ढीली हो ना, ब्रेन की नस ढीली हो, डैम हो जाना। किसी के दुख नहीं देख सकती थी, इतना ब्लड से किसी प्रकार से भी खून मतलब आ गया, चाहे चक्कू से आ गया चाहे किसी से आ गया, एकदम कमजोर होना और चक्कर खा के गिरना, कितनी वीक आत्मा थी। तो सच में ऐसे डॉक्टर तो मैं बन ही नहीं सकती थी, स्टेमिना ही नहीं थी ना, पर भावना थी कि मैं डॉक्टर बन के ऐसी सेवा करूं, सब स्वस्थ हो जाए। तो बाबा से जब मैंने कहा कि बाबा मुझे डॉक्टर बनना है और ऐसे सेवा करनी है, तो बाबा ने कहा, बच्ची बहुत अच्छा लक्ष्य है, ऐसी सेवा होनी चाहिए। आज बाबा तुम्हें रूहानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट देता है, तुम्हारे पास जो भी आएंगे सब स्वस्थ हो जाएंगे, तन से भी हो जाएंगे, मन से भी हो जाएंगे। बच्ची जानती हो कि 90% जो बीमारियां होती हैं वो मानसिक होती हैं, 10% जो बीमारियां हैं वो शारीरिक हैं, खान पान है, घटना दुर्घटना, उसका ट्रीटमेंट तो डॉक्टर बहुत अच्छा दे रहे हैं, 90% कोई नहीं दे रहे हैं। आज बाबा तुम्हें रूहानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट देते हैं और तुम एक काम करना, ट्रेनिंग भी दे दी, कोई भी आए तो ऐसी पावरफुल दृष्टि देना जिससे उस बीमारी का ऑपरेशन हो जाए, ऐसा पावरफुल पॉजिटिव संकल्प करना कि इसका बुखार ठीक हो जाए, इसकी ये बीमारी ठीक हो जाए, जो भी ठीक हो जाए वो इंजेक्शन का काम करेगा। और बच्ची तुम्हारे पास जो भी हो, फल हो, टोली हो, अमृत हो, वो ऐसे पावरफुल संकल्पों से पिलाना खिलाना जो उसको दवा का काम करे। आपको विश्वास नहीं होगा, आज मुझे 50 वर्ष होने जा रही हैं, जो ऐसे जिनको बाबा पर निश्चय है या भाग्य है आ जाते हैं वो 100% स्वस्थ हो जाते हैं। मात्र 10% बाहर की दवा ले ली, लेकिन पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन। इसके प्रैक्टिकल अगर अनुभव सुनना हो तो मेरे जीवन के वंडरफुल अनुभव है। और वंडरफुल अनुभव क्या है कि अभी कुछ समय पहले 2005-06 की बात है, हमारी प्रभा मिश्रा बहुत कैसेट भर रही थी हमारी, उस समय बहुत चल रही थी कैसेट। तो उन्होंने हमें संकल्प दिया कि बहन जी आपकी जो भाषण चल रहे हैं चैनल में उसकी डिमांड बहुत हो रही है और हमें 150 कैसेट भरनी है। और 150 कैसेट माला 7 दिन का हमारे पास टाइम है। तो हमने कहा कि 7 दिन के अंदर 150 कैसेट कैसी भरी जाएंगी, कैसे भरी जाएंगी? एक तरीका है कि अगर हम खाना खाएंगे तो हमें नींद आएगी, नींद आएगी तो टाइम जाएगा। आप एक काम करो, मुझे रबड़ी वाला दूध पसंद है और ब्रेड पसंद है, एक जग भर के 3-4 गिलास आप दूध का इंतजाम करो, बढ़िया गाढ़ा पतला पतला नहीं, और ब्रेड का इंतजाम करो। मैं 7 दिन खाना नहीं खाऊंगी, 7 दिन ब्रेड दूध लूंगी और आपकी 150 कैसेट भर के दूंगी, मेरी गारंटी है। तो वो तैयार हो गई, वो तैयार हो गई। भगवान का ये वरदान है कि आप सुनेंगे तो आपको वंडर लगेगा, मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल बाबा से योग लगाते हैं, बाबा जो संकल्प देते हैं वो संकल्प में उसी समय 5 मिनट के लिए मुझे साइलेंस चाहिए, और उस पॉइंट को बाबा ने दिया तो उसको आधा घंटा में अच्छे से सुना सकती हूँ। फिर 5 मिनट के लिए ब्रेक तो मिलती है खाने पीने के लिए, बाबा से बात करने के लिए। तो 7 दिन के अंदर मैं 150 कैसेट भर के दी, लेकिन जब कैसेट भर गई तो मैं योग में बैठी थी सवेरे 4 बजे, तो बाबा ने कहा बच्ची कल सवेरे अपने हार्ट को डॉक्टर को दिखा लेना, सवेरे अपने हार्ट को डॉक्टर को दिखा लेना। अभी ऐसी बात बाबा कहेंगे तो डर नहीं लगेगा? मैंने कहा बाबा आप क्या कह रहे हैं, हार्ट को डॉक्टर को दिखा लेना, इसका मतलब हार्ट गड़बड़ हो गया मेरा? क्यों गड़बड़ हो कुछ पता नहीं। अब खाने पीने का ज्ञान था पर इतना ज्ञान नहीं था क्या खाने से क्या नुकसान होता है। तो इतनी रबड़ी वाला दूध खाएंगे और 7 दिन खाएंगे लगातार तो फिर क्या होगा, कबाड़ा ही होगा। तो बाबा के कहने के अनुसार मैं सवेरे ही ड्रामानुसार अचानक डॉक्टर सतीश गुप्ता जी मिल गए, जब हम क्लास में जा रहे थे तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमें आपको दिखाना है, अपने हार्ट को दिखाना है, तो कब आए? कि बहन जी खाली पेट आ जाइए क्लास के बाद। हम गए और डॉक्टर साहब को दिखाया तो देख करके उन्होंने क्या बोला, बहन जी आप तो गए काम से, आपको छोटे छोटे अटैक तो कई आ चुके हैं, सुना बड़ा अटैक कब भी आ सकता है, आप लास्ट स्टेज पर हो, आपको रहना है कि ऊपर जाना है? मैंने कहा मुझे भी ऊपर नहीं जाना, बहुत कुछ काम करना है, मुझे रहना है और सेवा करनी है। तो उन्होंने ऐसे डाइटिंग खाना पीना और 2500 की दवाएं गोली लिख दी। जब गोलियां लिख दी तो मैं फिर बाबा के कमरे में गई और बाबा से मैंने कहा बाबा गलत बात है, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने ऐसे ही बोला ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको पहले दिन दूसरे दिन मुझे बताना था कि ब्रेड और दूध पीने से ये नुकसान होगा, लास्ट मोमेंट पर बता रहे हैं आप, ये अच्छी बात है क्या? तो बाबा ने कहा बच्ची डरो नहीं, मैंने तो तुम्हारा ध्यान खिंचवाया है कि तुम क्या क्या खाए जा रही हो, अभी गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है और हार्ट की जो प्रॉब्लम हो रही है उससे डरने की भी ज़रूरत नहीं। एक काम करो, भोपाल गई यहाँ से, भोपाल से मैंने दवाइयाँ खरीदी, फिर बाबा ने कहा दवाइयाँ वापस करा दो, और जैसे डॉक्टर ने कहा है खाने पीने की डाइट वो ध्यान रखो और मैं कह रहा हूँ वो ध्यान रखो, तो मैं क्या कह रहा हूँ तो रियल बता रहे हैं। बाबा ने मुझे 4 टैबलेट दी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोई अटैक वटैक नहीं है, कोई हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है। ये बाबा की पहली टैबलेट थी, मैं स्वस्थ हूँ। और दूसरी, मैं एकदम निश्चिंत हूँ, कोई टेंशन नहीं। टेंशन हो गया ना, हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, मैं एकदम निश्चिंत हूँ, कोई टेंशन नहीं है, एकदम फ्री हूँ। तीसरी, बाबा ने कहा हर प्रकार से मेरा हार्ट ओके हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आई है मेरा हार्ट ओके हो रहा है। चौथी टैबलेट थी, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई, मैं अनुभवी बनी, मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि मुझे हुआ तो मैं दूसरों को गाइड कर सकती हूँ ना। तो बाबा ने कहा 15-15 मिनट एक एक टैबलेट को खाने में लगाना और कोई गोली नहीं खाना, एक मास के बाद उसी डॉक्टर को दिखाना कि अब हार्ट की पोजीशन क्या है और उसको बता देना कि मैंने आपकी कोई गोलियां नहीं खाई हैं, सुना, मैंने केवल मेडिटेशन किया है और मैंने भगवान पर विश्वास किया और मैंने अपने ऊपर विश्वास किया। तो रियली चमत्कार, केवल एक मास का बाबा ने, एक मास खाने में थोड़ा तेल घी खत्म, बहुत खा लिया तुमने, मलाई खा ली, रबड़ी खा ली, अब तेल घी खत्म खाओ, लाइट लाइट खाना खाओ, थोड़ा वॉकिंग करो, थोड़ा घूमो और ये मेडिटेशन करो। तो चमत्कार हुआ, जब मैंने डॉक्टर को दिखाया कि बहन जी ओके, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैंने बताया मैंने आपकी कोई दवाई नहीं खाई है, कमाल नहीं है बाबा की, है ना, अनुभव करा है ना। तो मेडिटेशन कितना कमाल करता है, सोच का इफेक्ट कितना होता है, खाने पीने का होता है अपनी सोच से, सोच से ओके किया ना, थोड़ा सा कंट्रोल किया, एक चमत्कार हुआ। दूसरा, ऐसी उसी एक साल के बाद हम इंद्रप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ नहीं, हाँ नीचे इंद्रप्रस्थ ही है ना अपना, मैं यहाँ देख के सोचे कहीं कन्फ्यूज हो गई, इंद्रप्रस्थ में मैं गिर गई और नीचे ही सहज रूप से गिरी और ये मेरा घुटना है एकदम डैमेज हो गया, इतनी जोर से साबुन का पानी था वो बाथरूम के बाहर आ गया, बहन ने फेंकी बाल्टी तो बाहर आ गया और मैं थोड़ा सा गई बाथरूम की तरफ तो जोर से फिसल गई, ऐसी टांग टूटी कि उठना मुश्किल था और मेरे कमरे में उस समय कोई नहीं था। एकदम मैंने कहा बाबा प्लीज़ उठाओ, बहुत जोर से चोट लगी है, मैं नहीं उठ पा रही हूँ। तो सही में बाबा ने हाथ दिया और बाबा ने ही मुझे उठा के पलंग पे लेटा दिया, मुझे अनुभव हुआ बाबा आए, एकदम मुझे उठाया और पलंग पे लेटा दिया। लेकिन उसी क्षण ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास में एक तो मुन्नी बहन जी का फ़ोन आया, मेला चल रहा था हमारा 2006 का मेला था, कि आपको दादी बुला रही हैं, आप जल्दी से यहाँ दादी कॉटेज में आओ। इधर से ये शशि बहन जी का यहाँ से फ़ोन गया कि आपको डायमंड हॉल में क्लास करानी है और क्लास का टॉपिक उसी समय दे रहे हैं योग की हाइएस्ट स्टेज, सुना योग की हाइएस्ट स्टेज। अब भड़बड़ा करके टाइम कौन सा हो रहा है, 9:30 का, और पहुँचना है आपको 10 बजे और 10 बजे से लेकर के आपको 12 बजे तक 2 घंटे की क्लास में, 10:30 तक योग, 10:30 से 12 बजे तक ही क्लास करानी है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं एकदम गिर गई। जब गिर गई तो मैंने कहा बाबा मुझे दादी से मिलना है और मुझे क्लास भी करानी है, प्लीज़ कैसे भी करके मेरा दर्द ठीक करो, 1% भी दर्द नहीं होना चाहिए और मुझे क्लास करानी है। तो सहज भाव से मैं उठी, उठ के मैंने बस बाबा ने संकल्प दिया कि मुन्नी बहन से गाड़ी बुलवा लो, उन्होंने गाड़ी भेजी, गाड़ी भेजने के बाद दादी से मिली। लेकिन जब मैं दादी से मिली उस समय तक चोट ताजी ताजी थी तो मैं उठ ली और चल ली, लेकिन जैसे ही मैं 15-20 मिनट दादी के पास बैठी मेरा घुटना इतना जकड़ गया कि मैं तो उठ भी नहीं पा रही थी और इतना दर्द। फिर वहाँ अपने भाई साहब भी थे, मैंने भाई साहब को कहा भाई साहब चोट तो बहुत ज़बरदस्त लगी, मैं तो उठ नहीं पा रही हूँ। फिर अंदर मैं बाबा से कह रही मैं क्लास कैसे कराऊँगी, मुझे तो अभी क्लास करानी है, डायमंड हॉल जाना है, फिर बाबा से ही बात करके मैंने बाबा से कहा, बाबा देखो डायमंड हॉल की स्टेज पर मैं जाऊंगी, जरा भी दर्द नहीं होना चाहिए, टांग लगड़ानी नहीं चाहिए, और मुझे 2 घंटा बैठना है, कहीं भी दर्द योग की हाईएस्ट स्टेज का मुझे अनुभव करना है, तो इसमें आपको साथ देना पड़ेगा, आपको वंडर लगेगा। उसको हरी हर बोलते हैं ना, हरी हरने वाला है बोलते हैं ना, वैद्यनाथ है ना, ध्यान रखता है। कुछ जैसे अननोनपन में हमसे कोई भूल हो जाती है, वो दोष हमारा नहीं होता, वो कुछ क्या कहेंगे, अनुभव करने की एक नीति होती है। मैं गई स्टेज पर, 1% भी दर्द नहीं, बस एक भाई को मैंने कह दिया भैया मुड्ढा रख दो, मैं टांगे ऐसे फैला के क्लास कराऊंगी, क्योंकि मुड़ नहीं रही थी, ऐसे टांगे फैलाऊंगी। मैं टांगे फैला करके क्लास कराई, 2 घंटा बढ़िया, कोई भी 1% भी दर्द नहीं हुआ। और वैसे ही स्टेज से उठ के मैं रूम में आ गई, कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रूम में आ गई, इतना दर्द कि मेरे आँखों से आंसू और चिल्लाना शुरू हो गया। तो अपनी सब बहनों ने भाइयों ने कहा, बहन जी इतना दर्द हो रहा है तो चलो ग्लोबल हॉस्पिटल में दिखा के लाते हैं। तो फिर यहाँ पर सब भाई बहन लेके आई हमें ग्लोबल हॉस्पिटल में। जब दिखाया तो हमारे प्रताप मिड्डा भाई ने वो सब चेकिंग किया, एक्सरे निकाले, कहा बहन जी आपका घुटना तो गया काम से। मैंने क्या काम से गया, इसकी तो कार्डेज फट गई, लिगामेंट टूट गए, हड्डी टूट गई, मसल्स फट गई, आपकी तो कटोरी चेंज होगी। बाप रे बाप, ऐसे नीचे से गिरी तो कटोरी चेंज होगी। मैं तो ट्रेन से गिरी, मैं तो प्लेन से नहीं सॉरी कार से गिरी, छत से गिरी, पेड़ से गिरी, कहाँ कहाँ से गिरी, तो कुछ नहीं हुआ। और इतना नीचे से नीचे गिर गई तो ये पोजीशन। तो उन्होंने कहा बहन जी आपको तो अहमदाबाद जाना होगा और आपकी ये कटोरी चेंज होगी। मैंने कहा अहमदाबाद बाद में जाऊँ, पहले मुझे पांडव भवन बाबा के कमरे में ले चलो। सुना, तो वहाँ से ग्लोबल हॉस्पिटल से मैं सीधे बाबा के कमरे में आई, और बाबा के कमरे में आके फिर मैंने अच्छे से उलाने दिए। मैंने कहा पहले बताओ सच सच बाबा, बताओ मेरे से क्या भूल हुई है, ये तो कोई भूल की पनिशमेंट है, जो आप कहेंगे मैं वो करूँगी। लेकिन इतनी छोटी सी चोट में और इतनी बड़ी खोट निकल आए, और ऐसी पोजीशन में तो ऑपरेशन से बहुत घबराती हूँ, मुझे नहीं कराना चाहे कुछ भी हो जाए। तो मालूम फिर बाबा ने क्या कहा, भूल तो बहुत बड़ी की है, ये भूल की ही सजा मिली है। मैंने कहा बताओ क्या भूल की है, आगे से मैं अटेंशन रखूँगी। तो क्या भूल की है कि तुम्हारा जन्म हुआ है इस पांडव भवन से, बाबा के कमरे से, तुम्हें इतने वरदान मिले हैं, इतनी दुआएं मिली हैं, अब तुम्हारे क्या अरमान सारे पूरे हो गए? अब जब से शांतिवन बना है तब से तुम यहाँ नहीं आती हो, शांतिवन आती हो वहाँ के प्रोग्राम करके चली जाती हो। ये जो बीज रूप भूमि है, ये जो वरदानी भूमि है, इस भूमि की भी तो कदर करनी है कि नहीं? मैंने तुम्हें टांग खींच के बुलाया है, तुम अपने आप नहीं आई हो, मैं तुम्हें टांग खींच के बुलाया है, और अब तुम एक दृढ़ संकल्प लो, रियल बता रही प्रतिज्ञा, एक दृढ़ संकल्प लो, जब भी मैं आऊँगी, चाहे 1 दिन के लिए आओ चाहे 2 दिन के लिए आओ, तुम यहाँ कमरे में आओगी, पांडव भवन आओगी, मेरे से मिलोगी, हर प्रकार की जो भी तुम्हारे अरमान है मैं पूरे करूँगा, मेरे अरमान तुम पूरे करोगे। मैंने उस दिन से प्रतिज्ञा की कि बाबा सॉरी बाबा, प्लीज़ बाबा मेरी टांग ठीक होनी चाहिए, मैं आऊँगी। अब मैं इसके लिए क्या करूँ, मुझे ये ऑपरेशन नहीं कराना तो मैं क्या करूँ? तो बाबा ने पूरा मेथड बताया कि बच्ची जैसे तुमने हार्ट को ठीक किया ना, वैसे घुटने को ठीक करो, मेरा घुटना ठीक हो रहा है, मेरे कार्डिस सेट हो रही हैं, मेरे लिगामेंट सेट हो रही हैं, मेरा घुटना एकदम ओके हो रहा है, सब प्रकार से ठीक हो रहा है। तो जैसे उस ऑपरेशन में कम से कम 2.5 मास का ट्रीटमेंट होता है, बेड रेस्ट होता है, तुम्हें बेड रेस्ट नहीं करना है, तुम्हें केवल एक पट्टा बांधना है, क्योंकि चल नहीं पा रहे हो, सब बिखर गया ना, एक पट्टा बांधना है और बैठे बैठे जो आराम से चल सको वो काम करना है, और एक जगह बैठ के 40 दिन मेडिटेशन करना, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को, और फिर आराम से पट्टे बांध के कारोबार करना, कोई गोली नहीं खानी। और एक एक्सरसाइज बताई बाबा ने कि घुटने ऐसे सेट करके थोड़े घुटने को ही हिलाना, बाकी पूरा पाँव ना हिले, थोड़ी सेटिंग हो जाएगी, और बेड रेस्ट 40 दिन। 41वें दिन तुम यहाँ मेरे पास आना, सुना देखा ना, और जिस डॉक्टर ने कहा उसको बता देना। तो अब इतनी बड़ी चोट थी तो भाई साहब हमारे ऐसे सैर तो नहीं मान जाते, और हम जब कह रहे थे भाई साहब हमें कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, सब ठीक हो जाएगा, तो पागल हो तुम, ऐसे ठीक होता है क्या, नहीं मान रहे थे। तो भोपाल में जा करके भाई साहब ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल आयुष्मान हॉस्पिटल उसमें पुनः चेकिंग कराने के लिए लेके गए, तो डॉक्टर ने भी वही सजेशन दिया जो यहाँ दिया, ऑपरेशन कंपलसरी है। तो आपको ये एक विश्वास की बात बता रही हूँ, मुझे तो बाबा पर इतना 100% विश्वास है कि मैं शब्दों में क्या वर्णन करूँ। मैंने उस डॉक्टर को चैलेंज किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताएं, हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हम 40 दिन के बाद 41वें दिन हम आपके पास आएंगे, फिर आप हमको बताना कि हमें क्या करना है, अभी 40 दिन हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। डॉक्टर कहता है क्या हो गया आपको, 40 दिन के तो कबाड़ा हो जाएगा घुटने का, कबाड़ा नहीं होगा ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, मेडिटेशन से, चैलेंज हो गई ना। उस चैलेंज के आधार से मैं सिंगरौली गई, 40 दिन एक जगह रही, पट्टा मैंने बांधा, सुबह शाम मेडिटेशन किया, जैसे बाबा ने संकल्प दिए वैसे किया, और रियली 40 दिन के बाद 41वें दिन पट्टा खोल के बाकायदा गाड़ी में सवार होके सिंगरौली से कहाँ इलाहाबाद कानपुर शिकोहाबाद आगरा ग्वालियर ऐसे गाड़ी में चढ़ के उतर के जगह मैं भोपाल आई। मैं चल सकती हूँ, गाड़ी में चढ़ सकती हूँ, जा सकती हूँ, भोपाल आई। और भोपाल में आकर वो आयुष्मान हॉस्पिटल के डॉक्टर को दिखाया, उसने चेकअप किया, एक्सरा निकाला, सब देखा, दर्द तो नहीं हो रहा, चल रहे हो और चलो, तेज चलो, थोड़ा ऐसे चलो, ओके बहन जी क्या किया आपने, मेडिटेशन, तो गजब नहीं है, है ना। इसलिए राजयोग एक आध्यात्मिक विज्ञान है, जैसे हम भौतिक विज्ञान का चमत्कार देख रहे हैं वैसे ही राजयोग आध्यात्मिक विज्ञान है। हमारा सोच हमारे शरीर पर कितना इफेक्ट डालता है वो अनुभव जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा अनुभव कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा ना। लेकिन इस अनुभव को करने के लिए क्या चाहिए,
भर
हमारे अपने संकल्पों की जो सिद्धियां होती हैं वो दो बातों के आधार पर होती है। पहली है विधि और दूसरी है निश्चय की शक्ति। क्योंकि किसी चीज़ पर हमें निश्चय ही नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा, अगर हमारे मन के अंदर में जरा भी ये संकल्प मात्र भी आ गया ऐसा नहीं हुआ तो, सफलता नहीं मिली तो के चक्कर में तो भटक जाते हैं। लेकिन निश्चय की ताकत जब होती है तो भगवान अपनी ताकत यूज करता है। जब हमें निश्चय ही नहीं है तो बाबा हमें पावर क्यों देगा, समझ। प्लग में हमने लगाया और कनेक्शन सही नहीं है, प्लग ढीला है तो पावर आएगी क्या? नहीं आएगी ना। भले आप प्लग लगा रहे हैं लेकिन प्लग पॉइंट ढीला है, लूज है, तो नहीं खींच पाएगा ना। ऐसे ही हमारे अंदर में निश्चय की कमी है तो जो हम संकल्प करेंगे वो हमारे पूरे नहीं होंगे। तो निश्चय की ताकत चाहिए और जो विधि है उस विधि को विधिवत अपनाने की जरूरत होती है। जैसे हम जो चाहें जैसा चाहें बाबा से हम वैसा पा सकते हैं, वशर्ते आत्मविश्वास, परमात्मा विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास, अपने लक्ष्य पर विश्वास, अपने सोच पर विश्वास। ये पांचों में से कहीं भी विश्वास डगमगा गया तो आपकी सफलता डगमग हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक खेल खेल का खेल की बात है, हिस्ट्री इसकी मेडिटेशन हॉल की बात है कि दादी ने सब बड़ी बड़ी सब जितनी भी टीचर्स बहनें थी तो यज्ञ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो अकेली अकेली होती हैं, उसको कहाँ यूज़ करो, दो चाहिए तीन चाहिए, तो अकेली अकेली चीज़ मुन्नि बहन निकाल के रख देती है। तो उस समय पर गेम चलता था, लॉटरी सिस्टम, जिसको जो मिले है ना लॉटरी है। अगर ऐसे दें किसी कुछ तो फीलिंग आ जाएगी कि हमको ये दिया हमको दिया। अब चीज़ को सफल भी करना है, गिफ्ट में भी काम आ जाएगी, सेंटर पे चीज़ काम आ जाएगी, खेल का खेल भी हो जाएगा, सब फायदा ही है ना। पर हाथ से देने में तो नुकसान है। लॉटरी निकाली, पूरी लॉटरी। अब उस लॉटरी में क्या था, एक कृष्ण था, चांदी का गिलास था, एक प्रेसों की बच्चों की जो भंडारी होती भंडारी था, एक चुन्नी थी। दादी ने कहा कृष्ण की राधा कौन बनेगी, एक ये भी लॉटरी है, बाकी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी, एक ये भी लॉटरी है कि कृष्ण किसको मिलेगा, कृष्ण की राधा कौन बनेगी। चाहेंगे ना सब कि हम कृष्ण की राधा, चीज़ें तो मिल जाएंगी, कृष्ण की राधा बन जाए तो अच्छी बात है। तो दादी ने कहा जो कृष्ण की राधा बनेगी उसको चुन्नी ओढ़ करके डांस करना होगा, और ये मैं पेड़े लेके आई हूँ, पेड़े बांटेगी दादी सारी सभा में, और भंडारी सिर पे रख करके डांस होगा। बात बता रही हूँ अपने मन की, एक अंदर में विश्वास, चीज़ों को देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए, कृष्ण चाहिए। हमने संकल्प किया और बाबा से बात की, बाबा कृष्ण तो हमें लेना है, कैसे ले सकते हैं आप बताइए। तो बाबा ने हमें तीन बातें बताई। देखो जब कोई भी सौगात होती है ना ऐसी भगदड़ मचती है, टीचर्स बहने भी हम जाएं पहले। बाबा ने ऐसी भगदड़ में मत जाना, शांति से बैठना, धैर्यता से, और एक तक योग लगाओ, मुझे श्री कृष्ण चाहिए मुझे श्री कृष्ण चाहिए, इनको लेने दो, सौगात लेने दो, सब उठेंगे जल्दी जल्दी, जिसकी जो भी निकलेगी लेंगे, तुम्हें कृष्ण चाहिए ना, तुम बैठ ही रहो, जब मैं इशारा दूँ तब उठना। तो रियली 400-500 बहनें थी, शैला बहन भी होगी ना उस बीच में, कुछ याद आ रहा यहीं पर थी सब, तो बड़ी बड़ी सीनियर बहनें सब थी उस समय। तो मेरा के एक टक, बाबा मुझे कृष्ण चाहिए, बाबा मुझे कृष्ण चाहिए, बाबा मुझे कृष्ण चाहिए, कहीं पर ध्यान नहीं। और जब करी कर उठ गए, जो बूढ़ी बूढ़ी बहनें हैं, मतलब जो बुजुर्ग बहनें हैं, वो 10-15 रह गई, तो फिर बाबा ने कहा उठ जाओ, लो कृष्ण तुम्हारे हाथ में आएगा। रियली मैं उठी और सीधी 40 नंबर की लॉटरी मेरे हाथ में आई, 40 नंबर लॉटरी कृष्ण। अरे बाप रे बाप, दादी कहे क्या हुआ कुंज, क्या हुआ नल ने सब बड़ी बड़ी बहनों के नाम लिए, क्या हुआ? मैंने, दादी ये तो लॉटरी है, कृष्ण हमारा है, क्यों सोच रहे हैं आप? हम तो बहुत छोटे थे, सबकी बीच में बहुत छोटे थे ना, तो उस हिसाब से हमें कृष्ण की लॉटरी मिली, चुन्नी उड़ाई अपने पिया की, मैं तो बनी रे जुगनिया, खूब बढ़िया डांस किया, पेड़ बांटे, उसमें भंडारी में सिक्के थे, सबने सारी सभा ने सिक्के लिए और हमारे अरमान पूरे हुए। किस आधार से हुए? अपनी सोच, अपना विश्वास, उसी लगन में एक तक ये मिल जाए तो ठीक, तो भी चलेगा। जब जगह जगह बुद्धि हो जा रहा है तो क्या मिलेगा? एक तक, एक रस। जब ये भावना होती है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाती है। इसलिए अपने मन के अंदर में जो भी संकल्प, जो आप चाहते हो, अपनी शारीरिक स्थिति के लिए, अपनी मानसिक स्थिति के लिए, अपनी पारिवारिक स्थिति के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, उस सोच पर विश्वास। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, किससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आवश्यक हमें पुरुषार्थ करना है, ऐसा नहीं ड्रामा तो होगा हो ही जाएगा, ऐसे हमें गलत काम नहीं करना। पुरुषार्थ जो आवश्यक है वो हमें करना है, परंतु हमारे अंदर में इतना आत्मविश्वास, इतना परमात्म विश्वास होना चाहिए, उसमें 1% भी संशय नहीं आए। जैसे देखो, गाड़ी कितनी भी ब्रांड न्यू है, चाहे वो 50 लाख की है, चाहे करोड़ों की है, अगर टायर में कील लग गई तो हवा तो निकल जाएगी ना। वहाँ 50 लाख की कीमत नहीं, फोकट की हवा की कीमत है ना, फोकट की हवा की कीमत है कि हवा ना निकले, माना आपके विश्वास की सांस ना निकले, आपका विश्वास खत्म ना हो। और ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी परिस्थिति को देख करके हाफ आनी करना है, ये देखो, ऑब्जर्व करो, इसमें कोई रास समाया हुआ है, और शांति से तरीके से हमें ये कार्य करना है, नर्वस हो के, उदास हो के, परेशान हो के नहीं। कितनी मतलब कमाल, आपने सभी ने सुना होगा, जो कुछ पुराने भाई बहन हैं, जब बहुत पहली बार दादी ने ये संत सम्मेलन रखा था, जिसमें हरिद्वार से जहाँ तहाँ से बनारस से सब लोग आए थे, उन्होंने कितनी बड़ी चैलेंज रखी थी दादी के सामने। कोई अगर होंगे तो छोटेलाल भाई थे क्या? इतनी बड़ी चैलेंज रखी थी दादी को, कहा इतनी बड़ी सभा होगी 5-10 हज़ार की तो हम आएंगे, देशी घी का खाना होगा तो हम आएंगे, अलग अलग किचन हमारी पकेगी और ये इंतजाम किया जाएगा तो हम आएंगे, हमारा बढ़िया जोर शोर से सम्मान होगा तो हम आएंगे, है ना, बहुत सारी चैलेंज। और दादी ने सारी चैलेंज को स्वीकार किया। नीचे हम खाना खाएंगे, कोई टेबल पर नहीं खाएंगे, हमारे इतने पटे होने चाहिए, इतने आसन होने चाहिए, सब व्यवस्था दादी ने कराई, सब प्रकार की। और अलग अलग कम से कम हरि के मठ के 50-100 लोग, मतलब 100 ऐसे थे जिसमें 100 किचन पकानी थी, एक एक के साथ 25-25 उनके फॉलोवर थे। और दादी ने बड़े संकल्प से यहाँ पांडव भवन के गेट पर सबसे आगे खड़े होकर सब ब्रह्मा कुमारियाँ सबको लेकर के बढ़िया सम्मान किया। और जैसे ही वो शंकराचार्य और संत महंत महामंडलेश्वर बाबा के कमरे में गए, तो बाबा ने उनको क्या समझाया, कहाँ पर आए हो, ये अनुभव करो, ये देवनगरी है, यहाँ फरिश्ते रहते हैं, इनके हाथ का भोजन खाओगे धन्य धन्य हो जाओगे, अपने हाथ का तो खाते ही रहते हो, इनके हाथ का खा के देखो और अपनी किचन पकाना छोड़ो। बाबा ने संकल्प दे दिए, सीधे जैसे ही बाबा के कमरे से निकले वैसे ही दादी से कहा, दादी आप जो खिलाएंगी वो हम खाएंगे, हम अपनी किचन नहीं पकाएंगे। अरे वाह, चमत्कार हो गया, गजब की बात। तो एक ही किचन चली, और जो भी सब भोजन खिला रहे थे, हम लोगों की भोजन खिलाने की हमेशा कॉन्फ्रेंस में ड्यूटी रहती, तो हम लोग जब बहनें सब भोजन खिला रहे थे, सब कह रहे थे देवलोक की परियां हमको भोजन खिला रही हैं, हम तो कैलाश पर्वत पर हिमालय पर भोजन कर रहे हैं, अरे वाह क्या अनुभूतियाँ हो रही हैं, वंडरफुल अनुभूतियाँ। और इतना वंडरफुल अनुभूतियाँ कि जब ओम शांति भवन में भाषण कर रहे थे तो सारी सभा के बीच में बोल रहे थे, स्वर्ग धरा पर लाएंगी तो ब्रह्मा कुमारियाँ, स्वर्ग धरा पर लाएंगी तो केवल ब्रह्मा कुमारियाँ। लेकिन दादी हम ये बात यहाँ कह रहे हैं, अपनी सभा में नहीं कह सकते, अपनी सभा में कहेंगे तो हमारे शिष्य में सिर में डंडा मारेंगे, तुम क्या घास काट रहे हो, ब्रह्मा कुमारियाँ स्वर्ग लाएं तुम क्या कर रहे हो। दादी हमारी तो दुकान है, दुकान चलानी है, इसलिए हम ये बात सभा में नहीं कह सकते, लेकिन हम चैलेंज कर रहे हैं। ये कम बात है क्या, भगवान का कैसे दिव्य अलौकिक कर्तव्य चल रहा है ये अनुभूति तो जो यहाँ आते हैं उन्हीं को होती है, पर ये अनुभूति संसार को हो जाए तो आज बाबा ने ये संकल्प दिया है कि ऐसे सबके अनुभव, जैसे हमने अपना अनुभव सुनाया, हर एक के अपने वंडरफुल अनुभव हैं ना, एक से बढ़कर के एक हैं, अपने ऐसे ऐसे अनुभव सब इकट्ठे करें, एक बड़ी बुकलेट तैयार करें, बढ़िया किताब पर अच्छा है हेडलाइन में, सब तीर्थों में तीर्थ महान माउंट आबू राजस्थान, तो गजब ना हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल का है, भगवान का सारा कारोबार यहाँ चल रहा है। अभी तो लोग क्या समझ रहे हैं, हाँ जैसे फलाने सत्संग में फलाने गुरु जी हैं, वो संत हैं, वो महंत हैं, हाँ ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी संस्था है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी रियली यहाँ भगवान का दिव्य अवतरण हो चुका है ये अनुभूति हो तब गजब हो जाएगा। और ऐसी अनुभूति कराने के लिए बाबा ने कहा अब समय आ चुका है, क्योंकि सबकी नज़र कहाँ जा रही है, ब्रह्मा कुमारी की तरफ, सबकी नज़र जा रही है ब्रह्मा कुमारी की तरफ। और ऐसी ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरफ से बाबा ने आज जो संकल्प दिया है, तीन प्रयोग करने के लिए। क्या होता है, हम सब योग तो करते हैं, सब योग करते हैं, लेकिन एक होता है जर्नल योग, एक होता है सिस्टेमेटिक योग। सिस्टेमेटिक योग माने मेथड, विधि के आधार से। तो विधि के आधार से बाबा ने संकल्प दिया कि जहाँ भी योग हो, चाहे मधुबन में हो, चाहे सेंटर पर हो, चाहे गीता पाठशाला में हो, चाहे कहीं पर हो, एक संकल्प को लेकर के मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, मुझे अपने द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है, मुझे अपने आप को क्या समझना है, मैं मास्टर भगवान हूँ, मास्टर भगवती हूँ, भगवान की सारी विशेषताओं को मुझे धारण करना है और दूसरों को अनुभव कराना है। जब इस पोजीशन की सीट पर सेट होंगे तो आपके अंदर शक्तियाँ उसी प्रकार की आएंगी ना, आएंगी कि नहीं आएंगी, फिर आपको अनुभव भी तो वही होंगे ना, बाबा अनुभव भी तो उसी प्रकार के कराएंगे ना, जैसे हमारे संकल्प होंगे और वैसे ही अनुभव होंगे। जब तक संकल्प हमारे नहीं होंगे वैसे अनुभव नहीं हो सकते। तो उस संकल्प को पावरफुल बनाना, उस संकल्प पर रिसर्च करना, ये तो हमारी जवाबदारी है। और जब तक ऐसे एक्सपेरिमेंट हम नहीं करेंगे हमारे अंदर वो अनुभव की ताकत भी नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं, एक हमने ग्वालियर में अपनी मकान के लिए जमीन ली थी, एक संकल्प किया था हमें गुलजार दादी के द्वारा इसका फाउंडेशन सेरेमनी कराना है। गुलजार दादी के द्वारा फाउंडेशन सेरेमनी कराएंगे तो हमें विश्वास होगा प्यारा बाबा आया है, क्योंकि रथ है ना, रथ में सवार होकर के बाबा भी आया, भावना उसी प्रकार की होती है। गुलजार दादी इतनी टाइट, इतनी बिजी शेड्यूल कि टाइम नहीं था, और उन्होंने हमें भी मना कर दिया, भाई सबको भी मना कर दिया, यहाँ तक कि प्रकाशमणि दादी ने भी कहा कि दादी आप जा सकती हो ग्वालियर, दादी अभी नहीं, बाद में, अभी टाइम नहीं है। हमारे अंदर थोड़ा सा भगवान से कसम कस्सा करने की एक भावना रहती है कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो आप तो कर सकते हैं। तो हम उस समय सिंगरौली में थे, हम बाबा के कमरे में बैठे और बाबा से कहा, आप में इतनी भी ताकत नहीं है, कहलाते हो तो सर्वशक्तिवान हो, आप गुलजार दादी को तैयार नहीं कर सकते? वो बार बार मना कर रही हैं, मैं नहीं आ सकती, ये टाइट प्रोग्राम आप नहीं तैयार कर सकते कि ग्वालियर की भूमिका अब दिलाई भी आपने है तो उद्घाटन भी फाउंडेशन भी आपको करना है और ये सिद्ध तभी होगा जब गुलजार दादी आएंगी। तो बाबा ने कहा हाँ आएंगी। कैसे आएंगी, कब आएंगी? 24 नवंबर 2002 चल रहा था, 24 नवंबर हम बात कर रहे थे बाबा से 10 नवंबर को, 24 नवंबर की डेट दे दूँ मैं बाबा, डेट दे दूँ, दे दो, सबको लिख दूँ पत्र, लिख दो। तो मैं वैसे ही कमरे से निकली और मैंने पत्र लिखवाया, कंप्यूटर से तैयार किया और 11 तारीख को मैंने पोस्ट भी करा दी। 10 तारीख को बात हो रही है शाम को, 11 तारीख को मैंने पोस्ट करा दी पूरे जॉन में कि गुलजार दादी 24 नवंबर को आ रही हैं, आप सब लोग 24 नवंबर को आ जाना और 25 को दादी चली जाएंगी सवेरे शताब्दी से और आप लोग भी सब चले जाना। चला गया पोस्ट, पत्र सब जगह चले गए। 12 तारीख को सवेरे मैं योग में बैठी तो बाबा कहते, बच्ची तूने पत्र तो लिख दिए, अरे गुलजार बच्ची को तो पता नहीं है कैसे आई गई। तो मैंने कहा है ना आएगी, उसको तो पता नहीं है। मैंने कहा बाबा जब पूछो तब मना कर देती हैं तो फिर क्या कैसे कहें कि भले मना कर देती मैं हाँ करवाऊँगा, पर उनके पास समाचार तो जाना चाहिए कि मुझे 24 तारीख को ग्वालियर जाना है, तो क्या करूँ, फटाफट से पहुँचो मधुबन। 14 नवंबर को बाबा आ रहे थे, 12 को बात कर रहे हैं, हम आपको बताएं 12 तारीख को बिना रिजर्वेशन के हम मधुबन आए, मधुबन आए और 14 तारीख को बाबा आ रहे थे। तो हम आगे बैठे और बाबा से कह रहे, बाबा प्यारे बाबा गुलजार दादी को तैयार करो, आज जो है ना 14 नवंबर है और 16 को हमें जाना है और फिर 24 को वहाँ दादी को आना है, प्लीज़ बाबा तैयार करो। तो बाबा ने कहा, निश्चय की बिंदी लगाकर बैठो, तो ना निश्चय बुद्धि हो ना, और आप आज भी अव्यक्त वाणी उठा के 14 नवंबर 2002 की मुरली पढ़ना छोटे लाल भाई, तो निश्चय बुद्धि हो, निश्चय की बिंदी लगाकर बैठो। ये बाबा ने शुरुआत की। ड्रामा अनुसार मेरे पर्स में उस स्वागत वागत करने के हिसाब से बिंदी रहती है, सफ़ेद बिंदी थी। बाबा को देखा के मैंने कहा बिंदी लगा रही हूँ, मुझे निश्चय है गुलजार दादी 24 तारीख को ग्वालियर पहुँचनी चाहिए, ये तब तक बिंदी लगी रहेगी 24 तारीख तक, 25 को मैं हटा दूँगी, लेकिन ये 100% गुलजार दादी को 24 तारीख को ग्वालियर पहुँचना है, पहुँचेगी। तो बस तुम मिलो, तो 15 तारीख को हम गुलजार दादी से मिले और जब गुलजार दादी से मिले तो वही बात कहने लगी, अवधेश तुम पीछे क्यों पड़ी हो मेरे? जब मैंने बता दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अगर तुमने 24 नवंबर डेट निश्चित कर ली है तो किसी सीएम को गवर्नर को बुला लो और अपना फाउंडेशन सेरेमनी करा लो, जब दादी के पास टाइम होगा तो फिर दादी द्वारा आ जाएगी। मैंने कहा गई काम से, हो गया कबाड़ा, ऐसे कह के दादी चली गई कमरे में, चली गई। फिर मैंने कहा बाबा क्या हो रहा है ये? बाबा ने कहा मैं बच्ची को द्वारा भेजता हूँ, तुम कहना। देखो भगवान से बात करते हैं, भगवान ट्रिक भी सिखाते हैं, क्या कहना कि दादी आपको जाना तो होगा, क्यों जाना होगा? क्योंकि बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, ये बोल देना बस, इसके बाद दादी तैयार हो जाएंगी। तो दादी आएंगी? हाँ आएंगी। अब बाबा को तो संकल्प देना होता है, फिर चक्कर लगा के फिर दादी आई। फिर मैंने वही बात रिपीट की, मैंने दादी देखो आज आप फाइनल कर देंगी, कल मैं जा रही हूँ, तैयारी हम करेंगे, जाना तो आपको है ही, क्यों जाना है, क्यों जाना है, ऐसी भी जोर जबरदस्ती क्या है? मैंने कहा इसलिए क्योंकि बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा है? कब कहा? मैंने कल ही कहा है। नीलू दराना कल ये बाबा से मिली थी क्या? क्या स्टेज पर जो होती है ना, तब सोचते हैं कि बाबा ने कहा था, कल बाबा से मिली थी क्या अवधेश? दादी ध्यान में तो नहीं है। मैंने कहा दादी आपको विश्वास नहीं है, कल बाबा ने कहा है कि आप ग्वालियर जाएंगी। सही में? जी दादी। नीलू देखना 24 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, हमने दिन भी नहीं देखा था। 24 तारीख को पड़ रहा रविवार, संडे का दिन। नीलू बहन कहती दादी आप जा सकती हैं, संडे का दिन है, आप जाओ दूसरे दिन सवेरे आ जाओ। जा सकती हैं? हाँ जा सकते हैं। तैयार हो गई, आ गई। कितना कमाल है, तालियां तो बजाओ ना। मेरा कहने का मतलब, भगवान के अलावा हमारी हर आश पूर्ण करने वाला, हर चश साथ देने वाला, हर मनोकामना पूर्ण करने वाला संसार में कोई नहीं है। इसे साथी है भगवान तो फिर क्या करेंगे आंधी और तूफान। हमें इतना निश्चय, इतना विश्वास। अब लास्ट में, अब आप देख रहे हैं ना, बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान सुनाया, इतना गहरा ज्ञान सुनाया, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई, कम है क्या? पढ़ा लिए ना, अब उसको प्रैक्टिकल में लाने की जरूरत है। अब पढ़ाई पूरी होती जा रही है और बाबा सिस्टम क्या अपनाते जा रहे हैं, जब छत पढ़नी होती है तो सारे बीच में बेस लगाते हैं ना, और जब पक्की हो जाती है तो सारे बेस में हटा दिए जाते हैं। अब सब हट रहे हैं ना, बाबा कैसे पार्ट प्ले कर रहा है वो आप देख रहे हैं। बाबा ये देख रहा है कि मेरे पीछे, मेरे होते हुए भी पर मेरी एब्सेंस में बच्चों का कारोबार कैसा चल रहा है। उसी तरीके से चल रही हैं, सिस्टमेटिक चल रही हैं, चल रही हैं। तभी तो अपने को ही तो चलाना है, कार्य किसको करना है, अपने को ही करना है। भगवान तो साक्षी होके देखेंगे, लेकिन हमें भगवान को सामने रख के चलना है। क्या होता है, बाबा नहीं आते हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाते। नहीं आ रहे तो क्या है, बोल ही तो नहीं रहे हैं ना, देख तो रही है, समझ तो रही है, करा तो रही है। जरूरी है कि बोलेंगे तभी समझ में आएगा, और नहीं बोले तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अब जो पार्ट प्ले होने वाला है, वाणी का कम और दृष्टि का ज़्यादा, संकल्पों का ज़्यादा, वो बाबा वाइब्रेशन क्रिएट कर रही हैं। इसलिए हमारी शुभ भावना है कि अपने अंदर के संकल्पों को इतना मजबूत बनाए, इतने प्योरीफाई बनाए, इतना पॉजिटिव बनाए, बाबा से हमारा कनेक्शन नेचुरल और निरंतर रहे। लास्ट में हम सबकी प्रत्यक्षता केवल योग बल पर होनी है, क्योंकि ज्ञान बल भी हमें योग बल ही सिखाता है। ज्ञान की ताकत क्या कह रही है कि योग, कनेक्शन क्लियर, एकदम नीट एंड क्लीन माइंड होना चाहिए। तो आज आप सभी को अनुभव सुनाने का मौका मिला, इसके लिए आप सभी के लिए हमें जो चांस दिया हमारे छोटे लाल भाई ने, बहुत बहुत तालियां बजाते हैं। ऐसा अवसर मिलता है, ये बड़े सौभाग्य की बात है, अपनापन फील होता है। और रियली जब हम मधुबन आते हैं तो हमें तो कण कण में भगवान दिखाई देते हैं, और हमारे जैसे भक्तों ने ये ऐसी बात कह दी होगी, उन्होंने लिख दी होगी, तो उन बेचारों का कोई दोष नहीं है, हमारा भी दोष नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र हमें तो बाबा नजर आते हैं, ये हमारी सोच का फर्क है। और लोग भावना से ही समझते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान तो है नहीं है कि सर्वत्र भगवान, कणकण में भगवान कैसे हो सकता है। ये वाइब्रेशन की बात है, ये वाइब्रेशन की बात है, ये प्रभाव की बात है, ये हर प्रकार से बाबा के ऑरा की बात है, ये हमारे विश्वास की बात है। ठीक है, ओके, ओम शांति। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। ओम शांति।